खालिद मसूद खान साहब का मजमून थोड़ा बहुत खराब तो होना ही चाहिए। रोजनामा दुनिया में 25 जनवरी 2022 को शाया हुआ, आपके पेश खिदमत है। सुबह नाश्ते से पहले दुनिया अखबार की ऐप पर अखबार पढ़ते हुए कॉफी पीता हूँ। इस रोज जब मैं अखबार के एडिटोरियल सफे पर रसूल बख्श रईस का कॉलम चाय काफी और अशरफिया पढ़ रहा था तो कॉफी का कप मेरे हाथ में था। इस दो आतिशा ने सुबह का मजा दोबाला कर दिया। अब ये कॉलम लिखते हुए भी कॉफी का कप सामने पड़ा है और लिखते हुए दरमियान में कॉफी के घूंट भरता हूँ, खिड़की से बाहर नजर दौड़ाता हूँ। हल्के हल्के बर्फ के गाले हवा में तैर रहे हैं। सड़क और लॉन के दरमियान पैदल चलने वाले रास्ते की दोनों अतराफ पर खड़ा हुआ पानी जमकर बर्फ बन चुका है। इस मुख्तसर सी रिहायशी कम्युनिटी के पहलू में बहने वाली नदी की जल तरंग बंद हो चुकी है और कल गुजरते हुए देखा कि दरियाए मामी की लहरें सर्दी की शिद्दत से जम चुकी हैं और पहलू बदलने से कासिर थी। गुज़िश्ता 2-3 दिन तो हवा भी इतनी तेज और सर्द थी कि बदन ढांपने के सारे बंदोबस्त उसकी शिद्दत के सामने हाथ खड़े करते दिखाई दे रहे थे। बाहर दर्जा ये हरारत -9 डिग्री सेंटीग्रेड और महकमा मौसमियात की पेशनगोई है कि अभी सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। कल दोपहर के बाद हवा रुकी हुई थी तो मैं ऐसे ही चलता हुआ घरों से आगे निकल गया और नदी के साथ साथ चलता हुआ थोड़ी दूर निकल गया। आगे एक खुला मैदान था और दूसरी तरफ दरख्तों से भरा हुआ कतई आराजी था। शुरू में कुछ दरख्त 12 माहे यानी सारा साल सरसब्ज रहने वाले थे, उनके बाद टुंड मुंड दरख्तों का एक सिलसिला दूर तक फैला हुआ था। मेरे दाई तरफ दूर तक खुला मैदान था और उसके एक तरफ 2 शेर थे और एक बुलंद दोबारा साइलोस था। मैदान बिल्कुल खाली था, फसल कट चुकी थी और अभी किसी नई काश्त के आसार दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं टहलते टहलते शेर्स और साइलोस के पास चला गया। वहां एक 60-65 साल उम्र का सेहतमंद गोरा नीली जीन और जैकेट पहने अपने ट्रैक्टर के इंजन का जायजा ले रहा था। मुझे देख कर उसने दोस्ताना अंदाज में हाथ हिलाया और मुझे साइड पर पड़े हुए स्टूल पर बैठने का इशारा किया। चंद मिनट बाद उसने इंजन का कवर बंद किया, हाथ साफ किए, मेरे करीब आकर खुशगवार मुस्कुराहट से गुड आफ्टरनून कहा और दूसरे स्टूल पर बैठ गया। उसके नाम का पहला हिस्सा जो उसने बताया खासा मुश्किल सा था जो मेरी समझ में नहीं आया, ताहम उसके नाम का दूसरा हिस्सा स्मिथ था। उसके फॉर्म के बारे में गुफ्तगु हुई तो बताने लगा कि उसने यहाँ अप्रैल के वस्त में सोयाबीन काश्त की थी और अपनी फसल अक्टूबर के वस्त में हार्वेस्ट कर ली थी। उसके पास यहाँ 600 एकड़ के करीब जमीन है जिसमें से उसने 400 एकड़ पर सोयाबीन काश्त की थी और बाकी 200 एकड़ में मुख्तलिफ सब्जियां फसलें और बकिया जमीन और बकिया ज्यादातर जमीन पर चारा काश्त किया था। उसके पास 40 अदद गायें थी और 7 वाले 2 मंजिला ऊंचे शेड अपनी गायों के लिए बनाया गया था। साइलोज में साइल्स भरा हुआ था जो सारी सर्दियां उसकी गायों के चारे के लिए इस्तेमाल होता है। सारी सर्दियां उसके पास अपनी गायों को खिलाने के लिए अब यही एक साइलेस है जो उसने चारे की फसल से बना रखा है। उसने तैयार करने का तरीका भी बताया है जिसकी कई बातें तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ी कि इनमें से बहुत सी चीजें मेरे लिए बिल्कुल नहीं थी और मजीद ये कई चीजों के नाम भी मैंने नहीं सुने थे। ताहम इतना समझ में आया कि वो चारे की फसल को बारीक काट कर उसमें यूरिया और मोलेसिस डालते हैं। चारे और दीगर अशिस तैयार करदा इस मुरक्कब को हवा में साइलोस में बंद कर दिया जाता है। इस दौरान मोलेसिस के 22 खमीर पैदा होता है और साइल्स तैयार हो जाता है। वो सर्दियों में अपने मवेशियों को यही तैयार शुदा साइल्स खिला रहा है। मैंने पूछा कि उसका खेत फारिग क्यों पड़ा है। उसने बताया सोयाबीन के बाद उमन विंटर राई का काश्त करता है। मगर 2-3 साल बाद खेल को फारिग छोड़ देता है। अब चंद दिन बाद इधर बर्फबारी शुरू हो जाएगी, मेरी सारी जमीन बर्फ से ढक जाएगी। अगले 4 माह ये बर्फ इस जमीन पर पड़ी रहेगी। ये बर्फ आहिस्ता आहिस्ता इस जमीन में जज्ब हो जाएगी। ये आसमानी बर्फ खुदाई तोहफा है, इसमें नाइट्रोजन होती है और ये बर्फ मेरी जमीन में नाइट्रोजन की सारी कमी पूरी कर देगी। मेरी अगली फसल भरपूर होगी और मुझे जमीन फारिग छोड़ देने का मुआवजा आइंदा फसल से मिल जाएगा। उसने बताया कि उसने साल 60 बुशेस, खुदा जाने ये क्या है, ताहम ये वहां इस्तेमाल होने वाला कोई पैमाना है, फी एकड़ हुई है और इस साल रेट $13 फी बशल था। मेरी फी बशल लागत $4 से थोड़ी सी ज्यादा थी। मैंने हिसाब किया तो उसकी कुल लागत तकरीबन $1,00,000 के लगभग, जबकि उसकी कुल आमदनी $3,00,000 से ज्यादा थी। इस शरह मुनाफे की वाहिर वजह सिर्फ और सिर्फ यही थी कि वहां सोयाबीन की फसल के लिए दरकार पैदावारी मदाखिल की कीमत बहुत कम थी और सब कुछ हुकूमत की तरफ से ज़रई शोबे को दी जाने वाली सहूलतों के तफेल मुमकिन हुआ है। इधर ये आलम है कि किसान खाद के लिए लाइनों में ख्वार हो रहा है और हुकूमत जिम्मेदारान बशमूल वजीर आजम मुल्क में यूरिया खाद की जखीरा अंदोजी मुलवस माफिया फर्टिलाइजर फैक्ट्रियों की पैसे की हवस मनसूबाबंदी में नाकामी और हुकूमत की नाअहली का एतराफ करने के बजाय मुख्तलिफ तावीलात दे रहे हैं।